अमेरिका का सबसे बड़ा मित्र और यूएसएस लिबर्टी। 8 जून 1967 को 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजरायली विमानों और नौसैनिक जहाजों ने अमेरिकी नौसेना की खुफिया जहाज यूएसएस लिबर्टी पर हमला किया, जिसमें 34 अमेरिकियों की मौत हो गई और 171 अन्य घायल हो गए। यह घटना अमेरिकी सैन्य इतिहास के सबसे अंधेरे और विवादास्पद अध्यायों में से एक बनी हुई है, न केवल हमले के कारण बल्कि इसके बाद हुए पर्दाफाश के कारण भी। जब इजराइल के बिना उकसावे की आक्रामकता, विश्वासघाती रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना के व्यापक रिकॉर्ड को देखा जाता है, तो लिबर्टी मामला एक दर्दनाक उदाहरण के रूप में सामने आता है कि कैसे अमेरिकी सरकार ने अपने सैनिकों की जान को अपने तथाकथित सबसे बड़े मित्र के साथ विशेष संबंध के अधीन कर दिया। आक्रामकता और विश्वासघात का पैटर्न। 1967 में इजराइल के कार्यों को अलग थलग समझा नहीं जा सकता। 6 दिवसीय युद्ध की शुरुआत ही इजराइल के मिस्र पर बिना उकसावे के पहले से किए गए हवाई हमले से हुई, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन था। अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल सशस्त्र हमले के बाद रक्षात्मक कार्रवाई को मान्यता देता है, पूर्व निवारक आत्मरक्षा का कोई कानूनी सिद्धांत नहीं है। फिर भी इजराइल ने 1956 के सिनाई आक्रमण से लेकर 1981 में इराक के उस इराक रिएक्टर पर हमले और उससे आगे तक अपनी एकतरफा युद्धों और हमलों को इस आविष्कृत तर्क के तहत बार बार छिपाया है। इसी तरह परेशान करने वाला इजराइल का युद्ध में धोखाधड़ी का रिकॉर्ड है। 1946 में किंग डेविड होटल पर बमबारी सियोनिस्ट उग्रवादियों द्वारा की गई थी, जो अरबों के वेश में थे। 1954 का लवोन मामला इजरायली एजेंटों को शामिल करता था, जिन्होंने मिस्र में पश्चिमी लक्ष्यों पर बम रखे ताकि स्थानीय समूहों पर दोष डाला जा सके। और हाल ही में 2024 में इजरायली बलों ने डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों के वेश में एक अस्पताल के अंदर 3 फलस्तीनियों को मार डाला। यह एक ऐसा कार्य है जो जेनेवा सम्मेलनों के तहत विश्वासघात की परिभाषा को पूरा करता है। इस पृष्ठभूमि में 8 जून 1967 की घटनाएं एक दुखद दुर्घटना से कम और एक स्थापित कार्यप्रणाली का हिस्सा अधिक प्रतीत होती हैं। यूएसएस लिबर्टी पर हमला। लिबर्टी एक स्पष्ट रूप से चिन्हित अमेरिकी नौसेना का जहाज था, जो एंटीना से लैस था, इसका हल नंबर और नाम बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था और एक इतना बड़ा अमेरिकी झंडा लहरा रहा था कि इसे नजरअंदाज करना असंभव था। बचे हुए लोगों ने गवाही दी कि उस सुबह इजरायली टोही विमानों ने कई बार जहाज के ऊपर से उड़ान भरी, इतने करीब की पायलट डेक पर मौजूद नाविकों को हाथ हिला सकते थे। कुछ घंटों बाद बिना चिन्ह के इजरायली जेट विमानों ने रॉकेट, नेपल्म और तोप की गोलीबारी के साथ हमला किया। हमला चरणों में आगे बढ़ा। सबसे पहले हवाई हमलों ने संचार को काट दिया, साथ ही जानबूझकर रेडियो जामिंग की गई ताकि आपातकालीन कॉल अमेरिकी छठे बेड़े तक न पहुंच सकें। इसके बाद टॉर्पीडो नौकाएं आईं, जिनमें से एक ने टॉर्पीडो दागा जिसने जहाज के हल में एक विशाल छेद कर दिया और तुरंत 25 लोगों की जान ले ली। बचे हुए लोगों ने बताया कि इजरायली गनबोट्स ने लाइफबोट्स पर गोलीबारी की, सशस्त्र संघर्ष के कानूनों के तहत एक स्पष्ट युद्ध अपराध। अंत में सशस्त्र हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त जहाज के ऊपर मंडराए और फिर हमले को रोक दिया। प्रत्येक चरण में हमलावरों को यह पहचानने का अवसर था कि लिबर्टी अमेरिकी है। किसी भी चरण में वे नहीं रुके। इजराइल ने बाद में दावा किया कि उसने लिबर्टी को मिस्री घोड़ा परिवहन जहाज एल कुसैर समझ लिया था। यह स्पष्टीकरण गहन जाँच के तहत ढह जाता है। दोनों जहाज आकार या उपकरण में एक दूसरे से नहीं मिलते थे। इसके अलावा भले ही इजराइल वास्तव में यह मानता था कि वह एक उसेर पर हमला कर रहा है, फिर भी वह एक और युद्ध अपराध का दोषी होता, पशुधन ले जा रहे एक निहत्थे नागरिक जहाज पर जानबूझकर हमला करना। उद्देश्य और सिद्धांत। क्यों एक अमेरिकी जहाज पर हमला किया गया? कई संभावनाएं एक साथ आती हैं। लिबर्टी को डुबोकर इजराइल एक ऐसे जहाज को चुप करा सकता था जो सिग्नल इंटेलिजेंस एकत्र करने का जिम्मेदार था। ऐसी जानकारी जो तेल अवीव ने वॉशिंगटन को बताए उससे परे इजरायली ऑपरेशनों को उजागर कर सकती थी। बिना चिन्ह के विमानों का उपयोग करके और जहाज को पूरी तरह डुबाने की कोशिश करके इजराइल शायद यह उम्मीद कर रहा था कि हमले का दोष मिस्र पर डाला जाए, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका को इजराइल के पक्ष में युद्ध में खींच लिया जाए। और जहाज के रेडियो को जाम करके इजराइल ने स्पष्ट कर दिया कि वह नहीं चाहता था कि बचे हुए लोग यह प्रसारित करें कि असली हमलावर कौन था। सबसे विश्वसनीय स्पष्टीकरण यह है कि इजराइल का इरादा था कि लिबर्टी लहरों के नीचे गायब हो जाए, बिना किसी गवाह के जो इसके कथन का खंडन कर सके। पर्दाफाश और विश्वासघात। अगर हमला चौंकाने वाला था तो इसके बाद का परिणाम शर्मनाक था। बचे हुए लोगों को सैन्य अदालत की धमकी के तहत चुप रहने का आदेश दिया गया। अमेरिकी नौसेना की जांच केवल एक सप्ताह तक चली, जिसमें गवाहियों को सख्ती से सीमित किया गया। राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन और रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनमारा ने लिबर्टी की रक्षा के लिए भेजे गए अमेरिकी विमानों को वापस बुला लिया, अपने सैनिकों की जान से ज्यादा भू राजनीति को प्राथमिकता दी। वरिष्ठ अधिकारियों ने बाद में सच्चाई स्वीकार की। विदेश मंत्री डीन रस्क ने घोषणा की कि उन्होंने कभी भी इजराइल की व्याख्या स्वीकार नहीं की। पूर्व संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष एडमिरल टॉमस मूरर ने हमले को जानबूझकर करार दिया और पर्दाफाश को अमेरिकी सरकार द्वारा सत्य को छिपाने के सभी समय के क्लासिक मामलों में से एक कहा। राष्ट्रपति के सलाहकार क्लार्क क्लिफर्ड ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि वॉशिंगटन ने इजराइल के साथ अपने गठबंधन को हमारे सैनिकों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण माना, यहां तक कि कैप्टन विलियम मैकगोनागल की मेडल ऑफ ऑनर समारोह को जानबूझकर कम महत्व दिया गया और उन्हें व्हाइट हाउस के सामान्य सम्मानों से वंचित किया गया। निष्कर्ष: अमेरिका का सबसे बड़ा मित्र। यूएसएस लिबर्टी की घटना एक क्रूर वास्तविकता को उजागर करती है। 1967 में इजराइल ने सैकड़ों अमेरिकियों को मार डाला और अपंग कर दिया, और वॉशिंगटन ने इजराइल को परिणामों से बचाया। हमला स्वयं जानबूझकर होने के सभी लक्षण दिखाता है, कई चरण, जानबूझकर जामिंग, बिना चिन्ह के विमान और लाइफबोट्स पर गोलीबारी। पर्दाफाश यह साबित करता है कि अमेरिकी नेता एक गठबंधन को बनाए रखने के लिए न्याय, जवाबदेही और मृतकों की स्मृति का बलिदान करने को तैयार थे। दशकों से बचे हुए लोग स्मारक समारोह आयोजित करते रहे हैं, जिन्हें उनकी अपनी सरकार ने बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया, भले ही वॉशिंगटन में अमेरिका का सबसे बड़ा मित्र की बयानबाजी जारी रही। लेकिन लिबर्टी का मलबा और इसके चालक दल की गवाही एक अलग कहानी सुनाती है, विश्वासघात, चुप्पी और एक ऐसे रिश्ते की कहानी जिसमें अमेरिकी जानों को बलिदान करने योग्य माना गया।